हरे कृष्णा। अक्रूर जी की यात्रा मथुरा से वृंदावन, ये विषय पिछले कई दिनों से चल रहा है। अक्रूर जी कंस के आदेश अनुसार मथुरा से निकल पड़े हैं और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वो चले जा रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि रथ किस तरफ चल रहा है, घोड़े कहाँ जा रहे हैं। अक्रूर जी पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के विचारों में मग्न है। सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उनके हृदय में पूरा प्रेम रहता है, बड़े भक्ति भाव से निकल पड़ते हैं और अक्रूर जी की यात्रा हम सब के लिए एक आदर्श यात्रा है, क्योंकि अक्रूर जी की भावनाओं का अनुसरण हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो भक्ति भाव से वृंदावन की यात्रा करनी चाहिए, या भगवान का दर्शन यहाँ मंदिर में भी करने आते हैं तो इसी भाव से आना चाहिए। दूसरी बात, अक्रूर जी अपने अहो सौभाग्य को भली भांति जानते हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उनके ही निज धाम में प्राप्त होने जा रहा है। और तीसरी बात कि इस सौभाग्य के लिए श्रीमान अक्रूर अपने आप को अति अयोग्य समझते हैं। साथ साथ में वो जानते हैं कि उनकी अयोग्यता के बावजूद वो अब श्री कृष्ण को इसलिए देखने जा रहे हैं या देख पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा उन पर है। ऐसी कृपा से ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति के पथ में आगे बढ़ सकते हैं। चलते चलते फिर अक्रूर जी सोच रहे हैं कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा श्री कृष्ण और श्री बलराम के सामने आऊंगा और पूरा दंडवत प्रणाम मैं करूंगा, उनको हृदय पूर्वक नमस्कार अर्पण करूंगा। और ऐसे सोच रहे हैं, सोचते सोचते वो कंस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कंस के कारण मुझे अब श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ है, होने जा रहा है। तो हम भी जब वृंदावन की ओर निकलते हैं तो उन सबको धन्यवाद देना चाहिए जिनकी वजह से आज हम इस यात्रा को कर पा रहे हैं, या हम मंदिर में आ रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, कथा सुनने के लिए, कीर्तन करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो हमें मन ही मन में हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए उन सबको जिनकी वजह से आज हम इस पथ में चल रहे हैं। ऐसे आभारी भाव को रखना बहुत आवश्यक है। भक्त वो होता है जो छोटी सी बात के लिए भी बहुत अपने आप को अयोग्य समझता है और अन्यों के प्रति एक आदर और कृतज्ञता की भावना रखता है। भगवान की भावना भी ऐसी है। कोई भक्त भगवान के प्रति अल्प सेवा भी कर लेता है तो भगवान उस भक्त के सेवा को, छोटे से सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं। और यदि भगवान कोई अपराध, भगवान के प्रति भक्त कोई अपराध कर भी देता है तो भगवान गंभीरता से उस अपराध को नहीं लेते हैं। तो खैर, अक्रूर जी ऐसे ही कंस को धन्यवाद दे रहे हैं और चल रहे हैं अपने मन ही मन में ऐसे विचारों से। आगे चल के फिर अब हम आठवें श्लोक पे अब पहुंच रहे हैं। आठवें श्लोक में अक्रूर जी अब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का गुणगान करने वाले हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 38वें अध्याय के 18वें श्लोक का पाठ हम करते हैं। यदर्चितं ब्रह्म भवाद्भिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम्। तो अक्रूर जी सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के जो देर से आते हैं ना, उनको पीछे ही बिठाइए। हाँ, तो आते आते फिर हो जाता। तो अक्रूर जी सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए सोच रहे हैं कि कौन हैं वो लोग जो कि उन चरण कमलों की उपासना करते हैं, उन चरण कमलों का आदर करने वाले लोगों में से सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी, ब्रह्मा जी। इसलिए अक्रूर जी यहां करते हैं यद, यद अर्थात वो चरण कमल, श्री कृष्ण के चरण कमल। अर्चितम, ये अर्चित किए जाते हैं या जो अर्चना कर रहे हैं, ब्रह्म भव आदि भी सुरैहि, ब्रह्मा जी, भव अर्थात शिव जी, आदि देवैहि। तो जितने भी और सुर गण हैं, जो देवता गण हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य आदि, ये सभी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आदर करते हैं, उपासना करते हैं। यहां तक कि श्रिया च देव्या, श्री लक्ष्मी देवी स्वयं ऐसे अर्चा पूजा करती हैं भगवान के चरण कमलों की। हम तो जानते ही हैं कि लक्ष्मी देवी सदैव अपने पति श्रीमन नारायण के चरण कमलों को दबाते रहती हैं, उनकी सेवा करती रहती हैं। और फिर मुनि भी ससात्वते ही, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं और इतिहास में हुए भी हैं, उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना की है। और सात्वते ही जो भक्तगण हैं वो तो करेंगे ही। तो किसी चीज का हम गुणगान जब करना चाहते हैं, किसी चीज की प्रशंसा हम करना चाहते हैं, तो एक तरीका ये होता है कि हम ये बताते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इसकी प्रशंसा करते हैं। यदि कोई जानकार लोग किसी व्यक्ति की प्रशंसा करें तो फिर वो बहुत एक मूल्यवान प्रशंसा हो जाती है। ऐरे गैरे की प्रशंसा से क्या मतलब है? जैसे समझ लीजिए, कोई गणित का क्षेत्र है, कोई उस क्षेत्र में बहुत प्रवीण है। यदि मेरे जैसा कोई कहे कि ये बहुत अच्छा गणित जानता है, मुझे क्या गणित पता है, कि मैं क्या कहूंगा, कि मेरी प्रशंसा से क्या मतलब होगा, मुझे तो कोई गणित आता नहीं है। परंतु गणित के क्षेत्र में जो बहुत प्रवीण हैं, जो जाने माने लोग हैं, बहुत विद्वान जो हैं गणित में, यदि वो प्रशंसा करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान है गणित में, तब ऐसी प्रशंसा का मायने होता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और उनके चरण कमल तो सबके द्वारा प्रशंसित हैं ही, परंतु हम इनका मूल्य तब समझते हैं वास्तव में जब हमें पता चलता है कि जितने भी बड़े बड़े देवता हैं ब्रह्मा जी और शिव जी से प्रारंभ होकर यहां तक कि लक्ष्मी देवी भी और साथ साथ ऋषि मुनिगण और भक्तगण सभी भगवान के चरण कमलों के आश्रित हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो हमारे मन में विचार आएगा कि हाँ हमें भी करना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने बुद्धिमान लोग जब भगवान के चरण कमलों की उपासना करते हैं तो हमें भी अवश्य करना चाहिए। इसमें अवश्य बहुत कोई मूल्यवान चीज होगी। तो यहां अक्रूर जी उन चरण कमलों को याद कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो उन लोगों के द्वारा जो उपासना करते हैं इन चरण कमलों की, वो चरण कमलों की प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, गोचारणया अनुचरै ही चरत वने, उन चरण कमलों से ही वो वन में जाते हैं। और वन में जाते हैं क्या करने के लिए? गोचारणाय, गायों के विचरण के लिए, गाय चराने के लिए जाते हैं। तो अपने चरण कमलों से चलते चलते गायों को साथ में ले जाते हैं चराते चराते, और क्या वो अकेले रहते हैं? नहीं, अनुचरै ही, उनके अनुचर जो होते हैं, उनके ग्वाल बाल मित्र हैं, वो भी उनके साथ में होते हैं। तो उन्हीं चरण कमलों से जो कि ब्रह्मा शिव आदि द्वारा पूजित हैं, श्री कृष्ण वन के अंदर चले जाते हैं गायों को और अपने प्रिय ग्वाल बाल मित्रों को लेकर। और उन्हीं चरण कमलों के ऊपर अक्रूर जी कहते हैं या सोच रहे हैं, यद गोपिकानाम कुछ कुंकुमांकितम, गोपिकाओं के शरीर से जो कुमकुम है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों को अंकित करता है या सुशोभित करता है। तो ऐसे दृश्य या चित्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो अक्रूर जी के मन में है। हम जब वृंदावन जाते हैं या मंदिर भी आते हैं तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। आप तो जानते हैं कि प्रहलाद महाराज ने नव विधा भक्ति का उल्लेख किया है श्रीमद् भागवत में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन नव लक्षणा। तो ये भक्ति के नौ लक्षण या अंग हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनके चरणों की सेवा भी करनी चाहिए। पाद सेवनम, तो पाद सेवनम तो लक्ष्मी देवी करती ही हैं। तो पाद सेवनम के अनेक अर्थ भी होते हैं, जैसे हमारे पैरों को इस्तेमाल करना भगवान की सेवा के लिए जाने के लिए। जैसे आप सब अब यहां आए हैं अपने अपने घरों से, आपके पैरों का इस्तेमाल तो किया ना आपने, भले आप गाड़ी में भी आए होंगे फिर भी पैरों का इस्तेमाल तो किया। थोड़ा कष्ट लेकर आप सब यहां आए, तो हमारे पैरों की सेवा, पैरों के इस्तेमाल से जब भगवान की सेवा होती है, क्योंकि हम यहां श्रवण कीर्तन करने आए हैं, तो ये भी पाद सेवनम कहलाता है। मंदिर जाना, तीर्थ स्थान धाम में जाना, परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा करना, ये सब भी पाद सेवनम के अंतर्गत माना जाता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो भी तदीय सेवा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सेवा है, वो सब पाद सेवनम के अंतर्गत माना जाता है। जब ऐसी सेवाएं कर करके हम इसमें निपुण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, तब इसकी परिपूर्णता ये होती है कि हम भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगा सकता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ चुका है। और हम सब तो यहाँ आए हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए भगवान के चरण कमलों का स्मरण हमें करना चाहिए। और अक्रूर जी हमें दिखला रहे हैं कि कैसे भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। वैसे भगवान के चरण कमलों का गुणगान तो बहुत जगह हुआ है। प्रसिद्ध श्लोक आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत के वेणु गीत से, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरथर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि श्री कृष्ण के बालों में मोर पंख है, एक आभूषण है, बरहा पीड़म नटवर, और नृत्य करते हुए वो जा रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से दिव्य नृत्य करते हैं श्री कृष्ण, और उनका शरीर भी दिव्य है। कर्णयोः कर्णिकारम, अपने दोनों कानों में उन्होंने सुंदर और सुगंधित कर्णिकार फूल लगाए हुए हैं जो उनके कर्णों को सुशोभित कर रहे हैं। बिभ्रद्वासः कनक कपिशम, उन्होंने पीतांबर धारण की हुई है, स्वर्ण रंग की धोती पहनी हुई है, गले में वैजयंती माला है, बहुत प्रसिद्ध माला है, इसका नाम हम सब सुन चुके हैं। रंध्रान वेणोर अधया अधरा पूरयन, जब बांसुरी है उसके छेदों में वो अपने होठों के अमृत को भर रहे हैं, अर्थात वो बांसुरी बजा रहे हैं। और गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद, और प्राविशद वो प्रवेश कर रहे हैं कहां पे, वृंदारण्यम में। वृंदारण्यम अर्थात वृंदावन, अरण्य का अर्थ होता है वन, तो वृंदावन का दूसरा नाम है वृंदारण्यम। तो वृंदारण्यम प्राविशद श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं वृंदारण्यम में, वन में जा रहे हैं। किनके साथ जा रहे हैं? गोप वृंदैः, उनके सारे ग्वाल बाल मित्र हैं, और ग्वाल बाल मित्र क्या कर रहे हैं? गीत कीर्ति ही, श्री कृष्ण का गुणगान किए जा रहे हैं, श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, श्री कृष्ण का सौंदर्य को देख के सौंदर्य को देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं श्री कृष्ण की, खेल रहे हैं कृष्ण के साथ में। और जैसे श्री कृष्ण ऐसे अपने ग्वाल बालों सहित वृंदावन में प्रवेश करते हैं स्वपद रमणम, तो अपने चरण कमलों से वृंदावन की भूमि को अंकित करते हैं, और इस तरह से वृंदावन धन्य हो जाता है। वृंदावन की विशेषता क्या है कि इसमें सब जगह श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि वृंदावन यहां पृथ्वी पर प्रकट हुआ है तो पृथ्वी भी धन्य हो चुकी है, ऐसे भागवत में सुखदेव जी कहते हैं। तो पृथ्वी स्वर्गलोक से भी ज्यादा भाग्यशाली है। और आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी न केवल स्वर्गलोक से श्रेष्ठ है परंतु वैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ है। अब ऐसा क्यों आप सोचेंगे? अरे ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हमने तो सुना था कि वैकुंठ का मतलब है भगवान का धाम, और पृथ्वी लोक तो भौतिक जगत के अंदर है, तो ये पृथ्वी लोक वैकुंठ जगत से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? देखिए, वैकुंठ जगत में बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं जिनमें कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में निवास करते हैं, परंतु वैकुंठ लोकों की जो राजधानी है या सर्वोच्च लोक है वो है कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन, जिसमें भगवान चतुर्भुज रूप में नहीं रहते, अपने मूल द्विभुज रूप में रहते हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण यहां धरातल पर प्रकट होते हैं तो अपने स्वधाम को, अपने वृंदावन धाम को साथ में लेकर आते हैं। वही वृंदावन धाम, नकली धाम नहीं है, ये असली धाम है। तो उसी धाम को यहां लेकर आते हैं और इस धाम में फिर वो चलते हैं, अपने चरण कमलों से इस धाम को, इस भूमि को अलंकृत करते हैं। और क्योंकि ये वृंदावन अब पृथ्वी पर प्रकट हो चुका है, इसलिए जब श्री कृष्ण वृंदावन में चलते हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वी भी श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से अलंकृत हो जाती है। तो फिर ये प्रश्न होता है कि वैकुंठ में ऐसे नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वैकुंठ में भगवान पादुका धारण करते हैं, इसलिए उनके चरण चिन्ह जो हैं वो जमीन पर लगते नहीं हैं। लेकिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर चलते हैं, जूते पादुका आदि नहीं पहनते हैं। और क्यों नहीं पहनते हैं? आपने तो कहानी कथा सुनी होगी कि जब श्री कृष्ण बछड़ों को चराने के लिए ले जाना चाहते थे, बहुत छोटे थे उस समय, तो माता यशोदा को चिंता हुई, जैसे हर एक माँ को होती है अपने बच्चे के बारे में। अरे बाहर जाओगे जंगल में, वहां बहुत सारे कांटे हैं, पत्थर हैं, ये पैरों को चुभेंगे, चोट पहुंचेगी, तुम इतने छोटे हो अभी, तुम्हारे चरण अभी इतने कोमल हैं, तुम्हारे तलवे इतने मजबूत नहीं हैं अभी कि तुम नंगे पैर जा सको अब, तो चलो तुम्हारे लिए मैं पादुकाएं लाई हूं, ये पहन के जाओ, फिर मैं अनुमति दूंगी तुम्हें बछड़ों को चराने ले जाने के लिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तो सब ग्वाले हैं, गोपाल हैं, ये धाम है गोकुल गोलोक, हमारे लिए जो गाय हैं ये तो प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, तो मैं अकेला पादुका पहन लूं और इन गायों के लिए कोई पादुका नहीं, ये कैसे हो सकता? जब तक माते तुम गायों के लिए पादुका नहीं दोगे, तब तक मैं पादुकाओं को नहीं पहनूंगा। तो माता यशोदा ने सोचा कि ये कैसा प्रस्ताव है, अब ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब नंद महाराज के कितने गाय थे? 9 लाख गाय, और हर एक गाय के 2 पैर नहीं होते, 4 पैर होते हैं, तो कितने जूते चाहिए, कितने पादुकाएं चाहिए। अब नंद महाराज के घर में कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, फिर भी वो सोच रहे थे कि 9 लाख गायों के लिए पादुकाएं बनाना, भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो संभव नहीं है। तो फिर माता यशोदा ने बड़े मुश्किल से हाँ कह दिया, ठीक है जाओ। लेकिन वृंदावन धाम ये क्या है? ये एक चिन्मय धाम है। उस चिन्मय धाम में ऐसे रेलगाड़ियों की आवाज नहीं आती है, और जब वहां लीला हो रही होती है, कथा हो रही होती है, बीच बीच में ऐसे रुकावट नहीं होती है, बिजली भी चली नहीं जाती है, और वहां सब कुछ चिन्मय है। चिन्मय का मतलब है कि सब कुछ आध्यात्मिक है, सब कुछ चेतन है, और सबको श्री कृष्ण की सेवा को और अच्छा करने के लिए और मधुर बनाने के लिए तत्पर है। तो वृंदावन धाम में हर एक पत्थर, हर एक घास का तिनका, हर एक पेड़ आदि, सब कुछ हवा, सब कुछ चेतन है। तो जो कांटे पत्थर आदि हैं व्रज में, वो भी सोचते हैं कि अरे रे, अभी कृष्ण को तो पादुकाएं नहीं हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा कोई चोट पहुंच जाए श्री कृष्ण को। तो वो सब बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो जाते हैं, ताकि सब श्री कृष्ण चलते हैं उनके ऊपर, उनको कोई चोट पहुंचती नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को कोई कष्ट नहीं हुआ। और क्योंकि उनके सारे ग्वाल बाल मित्र थे, गाय थे, उनको भी कोई चोट पहुंची नहीं। तो सारे व्रज भूमि में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते थे उस समय। तो फिर ये प्रश्न भी आ सकता है कि ये कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मिट्टी में जाते जाते भले हमारे चरण चिन्ह लग जाएं कहीं, लेकिन फिर कोई और आता है और वो मिट्टी उस पर फैला देता है, वो चरण चिन्ह मिट जाता है। और वहां वृंदावन में जब श्री कृष्ण चल रहे होते हैं, अकेले तो नहीं होते, 900,000 गाय हैं, चार चार पैर वाले, और इतने सारे ग्वाल बाल हैं, दो दो पैर वाले, इसके अतिरिक्त कितने मोर हैं, कितने मृग हैं, कितने हिरण, कितने सारे पशु प्राणी हैं, वो सब चलते हैं। तो इतने सारे मनुष्य और प्राणियों को के चलते चलते श्री कृष्ण के पद चिन्ह जो है वो मिटे कैसे नहीं? क्योंकि वृंदावन के निवासी अच्छी तरह से जानते हैं कि सच्चा धन क्या है। वो समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, उनको जो वो चिन्ह है, वो सबसे बड़ा धन है उनका। इसलिए जैसे हम हमारे धन को, हमारे पैसों को, हमारे आभूषण आदियों को, सोने आदि को कैसे संभाल के रखते हैं, इधर उधर कहीं नहीं रखते, ठीक उसी तरह से वृंदावन के जितने भी निवासी हैं, भले वो ग्वाल बाल हों, भले वो मोर हों या हिरण हों, गाय हों, जब भी वो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते हैं तो मिटाते नहीं हैं, दूसरी तरफ से चले जाते हैं। इस तरह से सारा व्रज जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से सुशोभित है। इसलिए पृथ्वी लोक भी, जिसमें कि अब वृंदावन प्रकट हो गया है, वैकुंठ लोकों से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, भले हमें वो चरण चिन्ह अब दिखाई न दें, कोई बात नहीं, परंतु हमें जानना चाहिए। जब अक्रूर जी पहुंचे, उन्हें तुरंत दिखाई पड़े, प्रकट लीला में भगवान के इन चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। अंकुश, वज्र, कमल आदि ऐसे अनेक चिन्ह रहते हैं जिसके द्वारा पता चल सकता है कि ये श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। वैसे ये भी एक प्रमाण है किसी अवतार का। आजकल ये देखा जाता है कि कई लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, या तो स्वयं नहीं करते तो उनके अनुयायी जो हैं वो कहते हैं कि ये भगवान हैं, और वो ना नहीं बोलते। यदि कोई किसी व्यक्ति के अनुयायी उसे भगवान कहते हैं और वो व्यक्ति इनकार नहीं करता, मना नहीं करता, और उनके अनुयायियों को ये नहीं कहता कि मैं भगवान नहीं हूं, इसका मतलब है कि वो मान रहा है कि मैं भगवान हूं, भले वो अपने मुंह से न कह रहा हो कि मैं भगवान हूं। मौनम सम्मति लक्षणम। यदि हमें कोई कहे अरे आप तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और हम चुप रहे, तो इसका मतलब है हम कि मानते हैं कि हाँ ये जो कह रहा है सही है। तो यदि हम इस बात को सच नहीं मानते हैं तो हमें कहना चाहिए कि नहीं, मैं बुद्धिमान सबसे नहीं हूं। तो यहां सब लोग कितने सारे अवतारों की बात करते हैं, तो सच्चा अवतार कौन है और झूठा अवतार कौन है? सर्वप्रथम तो सच्चा अवतार वो है जिसकी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में या किसी भी वैदिक शास्त्र में की हुई है। इसके बिना किसी को भी हम अवतार नहीं मान सकते। दूसरी बात, ये भी उस शास्त्र में भविष्यवाणी में कहा जाना चाहिए कि जब वो अवतीर्ण होंगे तो वो किस तरह के विशेष अद्भुत कार्य संपन्न करेंगे जो कि मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। अर्थात अवतार को कोई ऐसे अद्भुत कार्य कर दिखाने चाहिए जो कि साधारण या असाधारण मनुष्यों के लिए भी संभव नहीं है। तीसरी बात, अपना विश्व रूप या विराट रूप प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने रणभूमि पर अर्जुन के सामने किया और हस्तिनापुर में एक संक्षिप्त छोटा विराट रूप भी उन्होंने दुर्योधन को दिखलाया। वृंदावन में अपने मां को भी अपने छोटे से मुंह में वहां भी एक छोटा सा विराट रूप दिखाया। चौथी बात कि जो भी अपने आप को अवतार कहता है उसके शरीर में ऐसे चिन्ह होने चाहिए, ऐसे लक्षण होने चाहिए जो कि केवल भगवान के होते हैं। और इन चिन्हों में से, लक्षणों में से एक ये है कि उनके हस्त कमलों में, हाथों और तलवों में कोई ऐसे चिन्ह होने चाहिए जिससे ये पता चल सकता है कि ये भगवान है। तो कोई कहे कि मैं अवतार हूं तो हमें कहना चाहिए आपके हाथ दिखाइए, आपके तलवे तो हम देखें। वो सोचेंगे हम प्रणाम करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, प्रणाम देखते हैं, देखना चाहते हैं चिन्ह है कि नहीं है, नहीं है तो आप भगवान नहीं है, क्षमा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह सारे वृंदावन में दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए गोपियां भी प्रार्थना करती हैं, उपासना करती हैं इन चरण कमलों की। आहुश्चते नलिन नाभ पदार विंदम योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य मगाद बोधैहि संसार कूप पतितोत्तर नावलंबम गेहम जुषाम अपि मनस्युदियात सदानः। गोपियां कहती हैं कि आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंदम, कि हे नलिन नाभ, नलिन अर्थात कमल, तो श्री कृष्ण की तुलना या श्री कृष्ण के अंगों की तुलना अक्सर कमल पुष्प से की जाती है या कमल के पंखुड़ियों से की जाती है, जैसे उनकी आंख, उनका मुख, उनके चरण, उनके हाथ इत्यादि, तो उनकी नाभि की तुलना भी कमल से की जाती है। इसलिए यहां गोपियां श्री कृष्ण का संबोधन करते हुए कहती है नलिन नाभ, हे नलिन नाभ, हे श्री कृष्ण जिनकी नाभि कमल की तरह है, पदारविंद, तो आपके जो चरण कमल हैं, योगेश्वरेर हृदि विचिन्त्य मगाद बोधैहि, आपके इन चरण कमलों के ऊपर ध्यान करते हैं बड़े बड़े योगी जन, योगेश्वरे, और जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, अगाध बोध है, जिनकी बुद्धि बहुत विशाल होती है, ऐसे तपस्वी, ज्ञानी, योगी, मुनि आदि आपके चरण कमलों के ऊपर ध्यान करते हैं। और हम तो कोई ज्ञानी नहीं है, न ही हम कोई योगी है, न तपस्वी है, न हमें कोई शास्त्रों का ज्ञान है। हम कौन हैं? हम साधारण गांव की स्त्रियां हैं, गेहम जुषाम, हम अपने घरों में रहती हैं, गेहम अर्थात घर में, हम गृहस्थ हैं, हमारा काम है दही का मंथन करना, मक्खन बनाना, घी बनाना, गाय का दोहन करना, बच्चों का देखभाल करना, घर के कामों में हम व्यस्त रहते हैं। तो जब बड़े मुश्किल के बाद भी, बड़ी तपस्या के बाद भी, जब ये योगी जन और ज्ञानी लोग भी आपके चरण कमलों के ऊपर ध्यान स्थिर नहीं कर पाते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आपके वही चरण कमल हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाएं और हमारा इस संसार कूप से उद्धार हो जाए। ये संसार की तुलना एक कुएं से की जाती है जिसमें कि सारे बद्ध जीव गिर पड़े हैं, और विशेष रूप से ये इनकी चर्चा है जो कि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, केवल इंद्रिय भोग में ही लगे हुए हैं। तो गोपियां आदर्श भक्तों की तरह बहुत नम्र हैं, जैसे अक्रूर जी अपने आप को विषयी समझते हैं, गोपियां भी अपने आप को विषयी समझ रही हैं। तो वही चरण कमल कृपा करके हमारे हृदय में प्रकाशित कर दीजिए ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर चिंतन मनन हमें करना चाहिए। तो ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अब अक्रूर का ध्यान श्री कृष्ण के दिव्य सौंदर्य के ऊपर जाता है। तो आइए सुनते हैं कि अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का स्मरण किस तरह से करते हैं। तो 9वां श्लोक, द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालुकावृतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अब अक्रूर जी कह रहे हैं, द्रक्ष्यामि अहम्, द्रक्ष्यामि मतलब भविष्य में, मैं देखने वाला हूं। तो मैं क्या देखने वाला हूं? भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप का दर्शन मैं करने वाला हूं। सुकोप सुकपोल नासिकम, कपोल अर्थात उनके गाल, उनके बहुत ही सुंदर गाल हैं और उनकी नसिकाएं हैं वो भी बहुत सुंदर है। भगवान के मुखारविंद के हर एक भाग का वर्णन अक्रूर जी करते हैं, एक एक करके ध्यान करते हैं। तो भगवान के गाल तेज के द्वारा चमक रहे हैं, उज्ज्वलाम चंद्रकेण, और वो इसका स्मरण कर रहे हैं। उनका नाक भी बहुत सुंदर है। स्मित अवलोक अरुण कंज लोचनम, तो हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर है, साथ साथ में आलोक, आलोक अर्थात वो उनकी दृष्टि, वो देख रहे हैं। किन किन आंखों से देख रहे हैं? अरुण कंज लोचनम, उनकी आंखें थोड़ी लालमा है, उसमें लाल लाल रंग है थोड़ा। कंज लोचनम, लोचन अर्थात का आंखें और कंज अर्थात कमल। देखिए कमल शब्द के लिए कितने अर्थ हैं संस्कृत में। तो भगवान का और एक नाम है कंज लोचनम, कंज लोचन। पहले हम सुन चुके हैं अंबुजेक्षण, अब हम सुन रहे हैं कंज लोचन। बहुत सुंदर नाम है भगवान के, अनगिनत नाम है। हम भी भगवान के नए नए नाम बना सकते हैं, वैसे वो नए नहीं, हमारे लिए नए हो सकते हैं, लेकिन कहीं 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 ना कहीं किसी ने तो ये नाम दे ही दिए हैं भगवान को। तो फिर भगवान जो है वो हसमुख चेहरे, उनके चेहरे पे मुस्कान है और उनकी लाल और सुंदर आंखों से वो कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। साथ में मुखम मुकुंदस्य गुड़ाल कावृतम, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। ये जो हिरण आदि हैं मेरे दाहिने ओर से पार कर रहे हैं, ये लक्षण है कि कुछ शुभ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। इसका मतलब है मैं उस मुकुंद का चेहरा देखने वाला हूं। और वो चेहरा कैसे है? गुड़ अलक आवृतम। गुड़ का अर्थ है जो बहुत बका हुआ है, और अलक मतलब जो बाल है, जो बाल नीचे आते हैं और उनके कपोल को ऐसे घेरे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल ऐसे नीचे आते हैं और फिर ऐसे बक जाते हैं। तो इस दृश्य को अक्रूर जी अपने मन ही मन में देख रहे हैं, जैसा गोपियां भी प्रार्थना करती हैं। और इस बाल की, काले काले घुंघराले अलकों की का दर्शन या स्मरण गोपियां भी करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले बाल जो है अलक रूप में आते हैं, और गोपियां कैसे स्मरण करती हैं? अटति यद् भवान् अहनी काननम् त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम् कुटिलकुंतलम् श्रीमुखम् चते जड़ उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। गोपिया कहती है अटति यद् भवान्, जब हे कृष्ण आप दिन के समय अहनी काननम, दिन के समय आप वन में चले जाते हो गायों को चराने के लिए, त्रुटिर युगायते, एक त्रुटि अर्थात एक क्षण हमें एक युग के बराबर प्रतीत होता है, और हम आपके सुंदर मुखारविंद का स्मरण करते रहते हैं। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, आपका जो श्री मुख है बहुत सुंदर मुख है, उसमें ये अलका जो है बाल है, तो उसका हम स्मरण कर रहे हैं। हम तो 2400 घंटे स्मरण करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी गलती कर ली, ये आंखों में पलक आदि डाल दिए, जिसके कारण हम सतत दर्शन नहीं कर सकते, बीच बीच में आंखों को बंद करना पड़ता है। नहीं तो हम आपके काले घुंघराले बालों के अलकों को हम देख लेते। वैसे आपको एक हम शायरी सुनाएंगे, आप जानते हैं ना शायरी क्या है, आशा करते नहीं जानते, खैर जो भी है। वैसे देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु विषय कुछ ऐसे निकला इसलिए हम कह रहे हैं। हर एक धर्म का सम्मान हमें करना चाहिए, किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। अपशब्द किसी भी धर्म के बारे में या श्रद्धालुओं के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, परंतु इसमें हम जो कहने जा रहे हैं किसी गलत दृष्टि से नहीं। एक बार एक ऐसे थोड़े शायर लोग मिले थे और शायरी सुना रहे थे एक दूसरे को। तो एक थे जो इस्लाम धर्म का पालन कर रहे थे, तो इस्लाम धर्म का पालन करते उन्होंने बहुत सारे ऐसे शेर सुनाए, और हर एक शेर के अंत में फिर वो कहते, जिसे इस्लाम से उन्नस नहीं कुफर वो है। जिसे इस्लाम से उन्नस, उन्नस मतलब आदर या प्रेम या सम्मान, तो जिसे इस्लाम से उन्नस नहीं, या अर्थात जिसे इस्लाम का आदर नहीं, तो वो कुफर है अर्थात काफिर है। तो ऐसा वो हर एक शेर के बाद ये कहते थे। फिर उनके बीच में एक कृष्ण का भक्त भी था, तो कृष्ण भक्त ने सोचा अभी हमें भी कुछ कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा, काले काले घुंघराले बाल मेरे घनश्याम के, जिसे इस लाम से उन्नस नहीं कुफर वो है। इसे लाम कहते हैं। क्यों लाम कहते हैं? उर्दू शब्दावली में जैसे हिंदी संस्कृत आदि में ल होता है ना अक्षर, तो उर्दू में भी एक अक्षर होता है जिसको लाम कहते हैं, और लाम कैसे लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा में जे जे अक्षर होता है ना, जैसे जे अक्षर कैसे लिखते हैं वैसे उर्दू में ये लाम अक्षर लिखा जाता है। तो बिल्कुल भगवान कृष्ण के अलकों के समान है, तो वैसे ही एक आकार है। तो ये भक्त क्या बोल रहे हैं, ये कहते हैं काले काले घुंघराले बाल मेरे घनश्याम के, जिसे इस लाम से उन्नस नहीं कुफर वो है। तो ऐसे वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बालों का, उनके मुखारविंद का सौंदर्य का वर्णन वो कर रहे हैं। तो खैर ये एक शेर थोड़ा हमने याद आया, तो ये बतलाने के लिए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य जो है वो कितना अद्भुत है। इतना अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य कि सभी आकर्षित होते हैं। लक्ष्मी जी, देवता गण, वैकुंठ के निवासी, लक्ष्मी जी भी वैकुंठ छोड़ के वृंदावन आती हैं श्री कृष्ण के रास लीला में शामिल होने के लिए। क्यों ऐसे, जबकि नारायण भगवान भी तो वही श्री कृष्ण हैं। परंतु यद्यपि श्री कृष्ण और नारायण एक ही हैं, फिर भी रस में अंतर है। श्री कृष्ण रसेन उत्कृष्यते, रस के दृष्टि से श्री कृष्ण का रूप और भी मधुर है, और भी सुंदर है। हालांकि भगवान नारायण भी बड़े सुंदर हैं, फिर भी लक्ष्मी देवी वृंदावन चली आई, क्योंकि भगवान नारायण रास लीला जैसे लीला नहीं करते हैं। तो ये है श्री कृष्ण का आकर्षण और उनका सौंदर्य। वैसे लक्ष्मी देवी के पक्ष में कोई दोष नहीं है, क्योंकि नारायण और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, श्री कृष्ण भी उनके पति ही हैं। तो सभी आकर्षित होते हैं श्री कृष्ण के प्रति, यहां तक के श्री कृष्ण भी स्वयं आकर्षित होते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक बार द्वारका में जब श्री कृष्ण एक खंभे के सामने आए जो कि रत्नों से सुशोभित था, तो उस खंभे में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन हो सकता है, मैंने ऐसे सुंदर व्यक्ति को कभी नहीं देखा। फिर पता चला कि वो अपने ही प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण का सौंदर्य अतुलनीय है, अद्वितीय है, अद्भुत है। और जिनको भगवान की कृपा मिलती है, बस वही ऐसे भगवान के सौंदर्य को समझ पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। वैसे अनेक असुरों ने भी भगवान का रूप देखा, परंतु भगवान के सौंदर्य को देखते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं थी। परंतु जब किसी साधारण भक्त को भी भगवान कृपा देना चाहते हैं, तो वो साधारण नहीं रहता, वो असाधारण हो जाता है, क्योंकि उसे भगवान की कृपा मिल चुकी होती है। फिर वो भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के सौंदर्य को निखारने के लिए योग्य बन जाता है। तो भगवान भी अपना सौंदर्य देख लेते हैं, परंतु हमें भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें केवल भगवान के सौंदर्य में रुचि रखनी चाहिए, अपने सौंदर्य में नहीं। जितना हम भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होंगे, उतना ही अपने सौंदर्य में हमारी जो रुचि है वो खत्म होती जाएगी। दुनिया में सबकी आदत है कि अपने आप को सजा धजा के सबके सामने सुंदर दिखना, ये तो सबकी इच्छा होती है। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं चाहता कि जब मैं बाहर आऊं तो एकदम गंदा दिखूं, सब लोग मुझसे दूर चले जाएं, नहीं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जब मैं दिखाई पड़ूं किसी को तो लोग कहेंगे वाह कितना सुंदर व्यक्ति है। तो इसके कारण हमारी शारीरिक भावना वो बढ़ जाती है, फिर शरीर को सुंदर करने में न जाने कितने हमारे घंटे चले जाते हैं, कितना मूल्यवान समय चले जाता है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते हैं इंसान। परंतु जब हम श्री कृष्ण के सौंदर्य पर ध्यान देंगे तो अपने सौंदर्य का ध्यान हट जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए मंदिरों में, आश्रमों में जो आईना रहता है ना, हमेशा बहुत छोटा होना चाहिए, इतना ही बस, तिलक लगाने के लिए जितना होता बस उतना ही, ताकि खास करके जो विरक्त जीवन बिता रहे हैं उनको अपना चेहरा ज्यादा नहीं देखना चाहिए। वैसे यहां किसी कारण से एक बार एक आईना रखा गया था यहां दरवाजे के सामने मंदिर में, तो खैर कोई कारण था उसके पीछे वो दूसरी बात है, लेकिन हमने आके देखा कि यहाँ आईना है, और फिर देखा कि जो लोग आते हैं भगवान का दर्शन करने के बजाय सीधे आईने के सामने आते हैं, फिर अपना बाल ठीक करने बैठ जाते हैं, अपने चेहरे को देखने लग जाते हैं सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो हमें वैसे श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखना चाहिए, यहाँ इसलिए हम मंदिर में आते हैं, इंसानों के लिए नहीं आते हैं, हालांकि भक्तों के लिए अवश्य, भक्तों की सेवा करने के लिए। एक बार हमें याद है बहुत साल पहले हम जब दूसरे मंदिर में हुआ करते थे, तो वहां हमने एक सिनेमा के बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री को निमंत्रण दिया था जन्माष्टमी के लिए आने के लिए, वो भी कृष्ण भक्त हैं। तो हम उनसे मिलते थे समय समय पर, उनको किताबें देते थे, चर्चा करते थे, और आज भी वो जप करती हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो खैर वो आई मंदिर में, लेकिन जब मंदिर में आई इतने सारे ढेर सारे लोग थे जो भगवान का दर्शन बिल्कुल भक्ति भाव से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अभिनेत्री आई सब कृष्ण भगवान को भूल गए, उस सौंदर्य को भूल कर इस सौंदर्य में ध्यान सबका लग गया, सब चकाचौंध हो गए, अरे देखो ये फलाना फलाना अभिनेत्री आई हैं, सब एक दूसरे को बोले देखो 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 कौन आया है, अरे देखो 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 कृष्ण वहां है वो बोलो उनको। फिर ऐसे हुआ कि हालांकि वो बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी महिला हैं, सब कुछ हैं, फिर ये अगले साल से हमने नहीं बुलाया उनको, ये कहा कि सारे भक्त लोगों में फिर ऐसे कुछ हो जाता है, सब कृष्ण को छोड़ के इनके पीछे लग जाए तो अच्छा नहीं होगा। तो खैर भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य हमारा आदर्श है। तो ऐसे ही चिंतन करते हुए अक्रूर जी ने सौंदर्य का चिंतन किया, आगे भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो हम भी जब जाते हैं वृंदावन, हमें तो कृष्ण के सौंदर्य का स्मरण करते रहना चाहिए। तो अगले श्लोक में, दसवें श्लोक में भी ऐसे ही सौंदर्य का वर्णन अक्रूर जी कर रहे हैं। अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनम् मह्यं ननस्याद् फलमञ्जसादृशः। तो अक्रूर जी कह रहे हैं अपि अद्य विष्णोर मनुजत्वम ईयुषो, मैं अब देखने जा रहा हूं, किनको देखने जा रहा हूं, विष्णु मनुजत्वम, जिन्होंने कि मनुष्य रूप धारण किया है, अर्थात मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं, इसलिए एक मनुष्य की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, है ये भगवान। विष्णु शब्द का प्रयोग करके अक्रूर जी ये हम सबको बतलाना चाहते हैं कि ये भगवान है, परंतु मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं इस समय। भगवान विष्णु या नारायण का रूप चतुर्भुज है, परंतु जब भगवान नर लीला करते हैं अर्थात मनुष्य समाज में आते हैं तो द्विभुज रूप में आते हैं जो उनका मूल रूप है। यदि वो मनुष्य लीला चार भुजाओं से करते हैं तो ये कुछ ठीक ठाक नहीं लगता। जैसे हमारे बीच में चार हाथों वाला कोई आदमी दिखे तो कुछ अजीब सा लगता है। तो भगवान जब आते हैं मनुष्य समाज में तो अपने मूल रूप में आते हैं, द्विभुज रूप में। भगवान के जितने भी अवतार हैं वो दिव्य हैं, और उनका उनके बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करने से हमारा उद्धार निश्चित होगा ही, और उन सब के प्रति हमारा प्रेम हो सकता है। उन ये सारे लीलाएं जो भगवान की हैं वो सब मधुर हैं, फिर भी इनमें से सबसे मधुर जो लीलाएं हैं वो भगवान की नर लीलाएं हैं, जब वो मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं। भगवान की नरलीला भी अनेक प्रकार की होती है, क्योंकि नर समाज में भगवान अनेक रूपों में आते हैं। कभी कपिल देव बन के ऋषि बने, तो कभी श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, ऐसे अनेक रूप हैं उनके। नर रूप में, नर समाज में जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का रूप और उनकी लीलाएं सबसे मधुर मानी जाती हैं। तो अब वृंदावन में ऐसा मधुर रूप और ऐसी मधुर लीलाएं देखने अक्रूर जी जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अप्यद्य विष्णोः मनुजत्वम ईशो। और फिर कहते हैं भारावताराय भुवो निजेच्छया। भार अवताराय, अवतार मतलब कम करना, और भार मतलब बोझ, पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए भुवो, भुवो मतलब पृथ्वी, निज इच्छया अपनी इच्छा से वो यहां धरातल पर प्रकट हुए हैं, पृथ्वी के बोझ को हल्का करने के लिए। पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः, कुलशेखर महाराज कहते हैं कि मुकुंद जो है भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार को कम करने आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। तो अक्रूर जी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये स्वयं भगवान हैं, अवतार लेकर यहां पर आए हैं, और फिर उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। लावण्य धामनो भविता उपलम्भनम मह्यम। और मैं देखने वाला हूं श्री कृष्ण का सौंदर्य, श्री कृष्ण का रूप कैसे है, लावण्य धाम। लावण्य धाम, धाम का मतलब है निवास स्थान या भंडार। तो समस्त प्रकार के जितने भी सौंदर्य हैं ये सारे सृष्टि में, आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, उन सबको यदि एकत्र किया जाए तो वो एकत्र किया हुआ रूप श्री कृष्ण का है, इसलिए वो लावण्य धाम है। लावण्य अर्थात सौंदर्य, और यहां जितना भी सौंदर्य हमें इस भौतिक जगत में दिखाई पड़ता है वो केवल भगवान के उस मूल सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। इसलिए संसार के प्रति इतना आकर्षित न होकर हमें भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समस्त प्रकार के सौंदर्य उनमें निवास करते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा आते हैं तो मथुरा की नारियां जो हैं उनको अचरज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर, और वो कहते हैं गोप्यस तपह किम अचरण यद अमुष्य रूपम। गोपियों ने, गोप्यः तपह, किस तरह का तपस्या की, किस तरह की तपस्या की होगी उन्होंने कि वो सतत श्री कृष्ण के इस सुंदर रूप को देख पा रहे थे वृंदावन में। लावण्य सारम असमूर्ध्वम अनन्य सिद्धम, फिर भी ये लावण्य शब्द का या प्रयोग पुनः यहां करते हैं गोपी मथुरा के निवासी। श्री कृष्ण कौन है? लावण्य सारम, समस्त प्रकार के सौंदर्यों के सार हैं वो, निचोड़ हैं। सौंदर्य का सबसे घना रूप, जब दूध को घना किया जाता है, कर करके इतना घना जब हो जाता है तो फिर जो चीज बनती है वो बहुत मीठी होती है। दूध का जितना मिठास होता है, दूध के रूप में जब उस पदार्थ को आप ग्रहण करेंगे, स्वादिष्ट होता है अवश्य, परंतु इतना मीठा नहीं होता। परंतु उसे उबाल कर और घना घना किया जाता है तो सबसे घना जो उसका रूप होता है, फिर वो बहुत स्वादिष्ट होता है, दूध से भी अधिक। तो ठीक उसी तरह से जितने भी लावण्य, जितने भी प्रकार के सौंदर्य हैं आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में, उन सब का यदि सारों का सार लिया जाए तो वो है श्री कृष्ण का रूप। लावण्य सारम असम ऊर्ध्वम, सम मतलब भगवान के समान, असम मतलब भगवान के समान तो कोई नहीं है, ऊर्ध्वम मतलब भगवान के परे भी कोई नहीं है। श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है, उनका स्थान ऐसा है कि न उनके कोई बराबर है और श्रेष्ठ होने की तो बात ही दूर है। और वो अनन्य सिद्धम हैं, अपने आप में ही परिपूर्ण हैं, अपनी परिपूर्णता के लिए किसी और पर वो निर्भर नहीं हैं। और परिपूर्णता किस दृष्टि से कही गई है यहां पर? सौंदर्य की दृष्टि से। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण के सौंदर्य की परिपूर्णता किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारे साथ ऐसे नहीं होता, हमारे सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तरह तरह के हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तरह तरह के धातु आदि लगाते हैं चेहरे के ऊपर और सुंदर दिखाई पड़ने के लिए। तो ये आभूषण आदि हमारा सौंदर्य बढ़ाते हैं, ये हमारा विचार है। इसलिए हमारा सौंदर्य जो होता है वो अनन्य सिद्ध नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, अन्य चीजों के ऊपर निर्भर रहता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे नहीं होता। हालांकि भगवान अच्छे कपड़े पहनते हैं, आभूषण भी पहनते हैं, परंतु उद्धव जी श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण यहां पर प्रकट हुए थे तो अपने निज रूप में, अपने मूल आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूप में प्रकट हुए, जो कि बहुत सुंदर है। और उस रूप का सौंदर्य कैसे है? भूषण भूषणांगम, उनके शरीर पे जो आभूषण हैं वो सुंदर लग रहे थे क्योंकि वो श्री कृष्ण के अंग पे थे। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण ज्यादा सुंदर लग रहे थे आभूषणों को पहनकर, बिल्कुल बात उल्टी हो गई। तो ज्यादा सुंदर कौन बन गए? आभूषण बन गए, क्योंकि अब उनका संपर्क श्री कृष्ण से था। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को और ज्यादा कोई सुंदर नहीं बना सकता, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अनन्य सिद्ध हैं, अपने आप में उनका सौंदर्य भी परिपूर्ण है, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। दृग्भिः पिबन्ति अनुसवाभिनवम दुरापम, और उनका सौंदर्य हमेशा ताजा रहता है, कभी घिसा पिटा नहीं होता। बिना आभूषण के, बिना तैयारी आदि के व्यक्ति इतना सुंदर नहीं लगता, इसलिए बाहर नहीं जाता। परंतु श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण हमेशा, उनका सौंदर्य जो है हमेशा ताजा और आकर्षक लगता है। इसलिए ऐसे कहा गया है, रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि लक्ष्मी देवी का नाम है चंचला। चंचला मतलब जो बहुत चंचल होती है। लक्ष्मी देवी धन ऐश्वर्य आदि प्रदान करती हैं, तो आप सबको तो अच्छी तरह से पता है कि लक्ष्मी देवी किसी एक व्यक्ति के पास अधिक समय नहीं ठहरती। आज किसी के ऊपर कृपा करती हैं तो दूसरे दिन उससे दूर होकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाती हैं। आज धन है तो कल चले जाता है, इसलिए लक्ष्मी या धन चंचल है। तो लक्ष्मी देवी का और एक नाम है चंचला। तो लक्ष्मी देवी कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, उनका स्वभाव वैसे है। परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं, द्वारका में जब श्री कृष्ण निवास करते थे, उनके 16,108 रानियां थीं, उनमें से हर एक लक्ष्मी की ही रूप थी, प्रत्येक लक्ष्मी थी वो रानी, परंतु चंचला नहीं थी भगवान के संदर्भ में। भगवान के संग को कभी नहीं छोड़ सकी, क्योंकि भगवान का रूप इतना आकर्षक था और उनका आकर्षण इतना ताजा था। हर पल आए दिन, दिन प्रतिदिन भगवान का सौंदर्य बढ़ते जाता है, आकर्षण बढ़ते जाता है। इसलिए ये लक्ष्मियां भगवान श्री कृष्ण को कभी भी छोड़कर नहीं जा पाई, ऐसा रूप गोस्वामी कहते हैं। फिर मथुरा की नारियां कहती हैं, एकांत धाम यशसह श्रीह ऐश्वरस्य। सौंदर्य अर्थात श्री, यश और ऐश्वर्य के ये एकांत धाम हैं श्री कृष्ण। तो ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा श्री कृष्ण के सौंदर्य की मथुरा के निवासी करते हैं, और अक्रूर जी भी इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं। और वो कहते हैं कि वास्तव में मह्यम ननस्यात फलम अंजसा दृशः, मेरी आंखों की सफलता तब होगी जब मैं श्री कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगा। यदि मैंने कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो मेरे आंखें जो हैं वो निष्फल हैं, व्यर्थ हैं। उसी तरह से इस दुनिया में भी लोग बहुत सी चीजों को देखने के लिए आतुर होते हैं, उत्सुक होते हैं, परंतु जिसने भगवान श्री कृष्ण का रूप नहीं देखा, भले मंदिर में हो, चित्र में हो, अपने ध्यान में हो, उसकी आंखें किस काम की, व्यर्थ हैं। जैसे मोर के पंख के ऊपर ऐसे चिन्ह रहते हैं जो आंख की तरह दिखाई पड़ते हैं, परंतु सचमुच आंख तो है नहीं, वो बिना मतलब के आंख है। तो उसी तरह से यदि किसी के आंख होते हुए भी भगवान का दर्शन नहीं कर रहा हो तो उसकी आंखें तो व्यर्थ गई ही गई, उसका जीवन भी व्यर्थ है। तो ऐसे अक्रूर जी मानते हैं कि आज मेरे आंख जो हैं इनका अस्तित्व सफल हो जाएगा। तो कल से भी हम आगे और चर्चा करेंगे कि अक्रूर जी की प्रार्थना कैसी है, मन ही मन में वो क्या विचार करते हैं। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में ऐसे विचार करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे।